नमस्कार। जिंदगी में कभी कभी ऐसा क्यों होता है कि सब कुछ ठीक करते हुए भी अचानक मुसीबत आ जाती है,
और वहीं दूसरी तरफ कोई शायद मतलब गलत राह पर हो और फिर भी सुखी दिखता है।
हाँ बिल्कुल, इसी पहेली को, इसी गुत्थी को समझने के लिए आज हम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक गहना कर्मणोगति के एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करेंगे।
जी, अध्याय का नाम है आकस्मिक सुख दुख। ये हमें जीवन के इन अचानक आने वाले उतार चढ़ावों को समझने में मदद करता है।
हमने अपने आसपास देखा ही होगा, कोई बहुत नेक इंसान, बहुत भला आदमी अचानक किसी बड़ी विपत्ति में फंस जाता है।
हाँ, और कोई शायद बुरे काम करने वाला, वो चैन से जी रहा होता है, ऐसा दिखता तो है कम से कम।
सही कहा, किसी आलसी को बैठे बिठाए अब देखिए लॉटरी लग जाती है। और कोई दूसरा व्यक्ति जो बहुत मेहनती है, बुद्धिमान भी है, वो तंगी में गुजारा कर रहा होता है।
ऐसे में लोग अक्सर क्या कहते हैं?
वही कि सब भाग्य का खेल है या प्रारब्ध ही ऐसा था। बिल्कुल,
यहाँ तक कि जो बड़ी आपदाएं होती हैं, बाढ़, भूकंप, महामारी या कोई अचानक दुर्घटना,
हाँ हाँ अकाल मृत्यु जैसी चीजें,
जी, उन सब को भी इसी मतलब भाग्य या प्रारब्ध के खाते में डाल दिया जाता है।
तो आज हम इसी पूरी गुत्थी को पूज्य गुरुदेव के विचारों के माध्यम से सुलझाने की कोशिश करते हैं।
बिल्कुल, और पूज्य गुरुदेव यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात की ओर इशारा करते हैं। वो पंचाध्यायी के एक श्लोक का हवाला देते हैं।
अच्छा, कौन सा श्लोक?
श्लोक है, दैविकम दैहिकम चापि भौतिकम च तथेव हि आयाति स्वयं आहुतो दुखाना मेष संचयः।
इसका क्या अर्थ हुआ?
इसका सार ये है कि दुख जो है वो मुख्यतः तीन तरह के होते हैं। दैविक, यानी जो प्राकृतिक आपदाओं या बाहरी शोमेर से आते हैं, ऐसा माना जाता है,
जैसे बाढ़, भूकंप वगैरह।
हाँ, फिर दैहिक, जो हमारे अपने शरीर या स्वास्थ्य से जुड़े हैं, जैसे कोई बीमारी, कोई रोग।
ठीक है।
और तीसरे भौतिक, जो दूसरे प्राणियों या सांसारिक परिस्थितियों से पैदा होते हैं।
अच्छा।
और सबसे कह सकते हैं चौंकाने वाली बात यह है कि श्लोक कहता है ये दुख कहीं बाहर से टपके नहीं है
तो?
ये स्वयं का बुलाया हुआ ही होता है। मतलब ये घटनाएं जिन्हें हम आकस्मिक मान लेते हैं, असल में कर्मों की बहुत गहरी और जटिल व्यवस्था से जुड़ी हुई हैं।
ओह, मतलब ये मुसीबतें, ये दुख हमने खुद ही बुलाए हैं अपने कर्मों से। ये तो वाकई सोचने वाली बात है।
जी, लेकिन आम तौर पर लोग इसे कैसे लेते हैं? मतलब जब ऐसी कोई घटना होती है तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? पुस्तक में इसका भी जिक्र है।
हाँ बिल्कुल है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं कि आम लोगों की प्रतिक्रियाएं अक्सर समझ की कमी दिखाती हैं।
जैसे
कुछ लोग तो सीधे ईश्वर से नाराज हो जाते हैं, उन्हें दोष देते हैं।
हाँ, कि हमने इतनी पूजा पाठ की फिर भी भगवान ने ऐसा क्यों किया।
बिल्कुल, यहाँ तक कि कुछ नास्तिक भी बन जाते हैं इसी वजह से। और कभी कभी तो घर में कोई नया सदस्य आया, मान लीजिए नई बहू आई या कोई बच्चा पैदा हुआ,
तो घर में हुई अच्छी या बुरी घटना का सारा दोष या श्रेय उसी नए सदस्य पर डाल दिया जाता है।
हाँ ये तो होता है। पुस्तक में एक बहुत दुखद वाक्य का जिक्र भी है।
हाँ, वो बहुत मार्मिक है।
जहाँ नई बहू के आने के बाद घर में किसी सदस्य की मृत्यु हो गई और सारा दोष उसी बेचारी पर मढ़ दिया गया,
और उसे इतने ताने दिए गए, इतनी प्रताड़ना मिली कि उस स्त्री ने आत्महत्या कर ली।
बहुत दुखद। और इसी तरह विधवा स्त्रियों को अभागी समझना, ये भी तो उसी गलत सोच का नतीजा है।
बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे ये गलत धारणाएं, ये अज्ञान किसी का पूरा जीवन बर्बाद कर सकता है।
पर ये गलत धारणाएं बनती क्यों हैं? पूज्य गुरुदेव इसके कारण के बारे में क्या कहते हैं?
देखिए, पूज्य गुरुदेव के अनुसार इसकी सीधी सी जड़ है कर्म की गहन गति को न समझ पाना।
कर्म की गहन गति?
हाँ, जब लोग घटनाओं के असली कारण यानी कर्मों के जटिल विधान को नहीं समझ पाते तो वे फिर ऐसे ही मतलब उटपटांग विश्वास बना लेते हैं।
अच्छा।
और इसी अज्ञान से जन्म होता है भाग्यवाद का, जिसे अंग्रेजी में फेटलिज्म कहते हैं।
भाग्यवाद मतलब?
मतलब लोग ये मान लेते हैं कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा, इसलिए कोशिश करने से, मेहनत करने से क्या फायदा।
हाँ, फिर वो कहते हैं होनी तो होकर रहती है या किस्मत के लिखे को कौन मिटा सकता है।
जी,
और ऐसी बातें कहकर वो कर्म करने से, अपना पुरुषार्थ करने से पीछे हटने लगते हैं। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि शायद शुरू में ये मुश्किल समय में मन समझाने का एक तरीका रहा होगा।
हाँ, जब हालात काबू से बाहर लगे। हाँ। तो मन को ढाढ़स बंधाने के लिए।
लेकिन धीरे धीरे ये सोच हमारे अपने कर्तव्य पर, हमारे पुरुषार्थ पर ही कुल्हाड़ी चलाने लगती है।
बिल्कुल, लोग फिर कहते हैं अजगर करे न चाकरी। हाँ। पंछी करे न काम।
दास मलुका कह गए सबके दाता राम।
हाँ, मतलब बस भाग्य भरोसे बैठ जाओ।
जी,
लेकिन पूज्य गुरुदेव अंत में बहुत स्पष्ट करते हैं इस बात को।
क्या?
कि ये जो आकस्मिक लगने वाली घटनाएं हैं, चाहे वो दैविक हों, दैहिक हों या भौतिक, वो असल में हमारे ही कर्मों का फल है, परिणाम है
हमारे कर्मों का।
हाँ, और कर्म भी उन्होंने बताया तीन तरह के होते हैं, संचित कर्म।
संचित मतलब जो जमा है।
हाँ, हमारे पिछले जन्मों के और इस जन्म में अब तक जमा किए हुए कर्म। फिर प्रारब्ध कर्म।
प्रारब्ध यानी जिनका फल अब मिल रहा है।
बिल्कुल, उन जमा कर्मों का वो हिस्सा जिसका फल हमें इस जीवन में भोगना है। और तीसरे क्रियमाण कर्म।
क्रियमाण यानी जो हम अभी कर रहे हैं।
जी, वर्तमान में जो हम कर्म कर रहे हैं। तो इन तीनों के, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण के जटिल मेलजोल से ही ये अलग अलग, कभी कभी अचानक लगने वाले सुख दुख के फल सामने आते हैं।
अच्छा, जैसे दूध से ही दही भी बनता है, घी भी। बिल्कुल सही उदाहरण दिया आपने। प्रक्रिया अलग है लेकिन स्रोत वही है। वैसे ही कर्म एक हैं, उनके फल विविध रूपों में कभी कभी आकस्मिक लगने वाले तरीकों से सामने आते हैं। और पूज्य गुरुदेव ये भी संकेत देते हैं कि इन घटनाओं के पीछे का जो वैज्ञानिक पहलू है उसका विवेचन पुस्तक में आगे किया गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार, इसका निचोड़ ये निकलता है कि जीवन में जो अचानक से सुख या दुख आते दिखते हैं,
जिन्हें हम अक्सर किस्मत या संयोग या कभी कभी किसी व्यक्ति का अच्छा या बुरा असर मान लेते हैं,
हाँ, वे शायद हमारे ही कर्मों के गहरे और जटिल विधान का हिस्सा हो सकते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है।
बिल्कुल, और इसलिए उन्हें गलत समझकर निराश होना या ईश्वर को कोसना या किसी निर्दोष इंसान पर उंगली उठाना, ये ना सिर्फ गलत है बल्कि हानिकारक भी हो सकता है।
सही बात है।
और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है।
किस सवाल पर?
कि अगर कर्मों के फल इतने पेचीदा तरीकों से सामने आ सकते हैं, दैविक, दैहिक, भौतिक रूप में, और कभी कभी इतने अप्रत्याशित ढंग से, तो कर्म फल की इस गहरी समझ को हम अपने आज के कर्म करने के तरीके में और जीवन की अनिश्चितताओं को देखने के अपने नजरिए में कैसे शामिल कर सकते हैं?
ये वाकई एक अहम सवाल है, इस पर विचार करना होगा।